समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम जन भागीदारी से जल संचय अभियान पर चर्चा करेंगे। जल अमूल्य निधि है और आने वाले समय में इस अमूल्य निधि के संरक्षण की आवश्यकता है। ये प्रयास तभी सफल होगा जब जन भागीदारी होगी। जन भागीदारी से ही जल संरक्षण प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय प्राथमिकता पहल बनाने के संकल्प की पहल है, जो जन भागीदारी के महत्व पर तो जोर देता ही है, एकजुट कार्यवाही के लिए भी स्वयं से प्रतिज्ञा को मूर्त रूप देता है कि हाँ, हमें जल की एक एक बूंद को बचाना है, जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभानी है। अपने दैनिक जीवन में जल को कैसे बचाएं, वर्षा जल का कैसे संचयन करें, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार। अशोक जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्ते। नमस्ते लवली जी।
श्रोताओं, आपके मन में जल संचयन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। ये आप ही का कार्यक्रम है, हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 यानी 2331444 और 2342105 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अशोक जी आगे बढ़े, उससे पहले हिसार हरियाणा से राजेंद्र की कॉल लगी है, उनका सवाल है, सुनते हैं। हेलो,
नमस्कार जी लवली जी और विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
नमस्कार राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
धन्यवाद। आम आदमी की इसमें क्या भागीदारी हो सकती है जी, ये जानना था। दूसरा नंबर ये जी, रोड वे पे हाईवे पे जो जमीन खाली रहती है, जो वहाँ पानी, हाईवे का पानी वहाँ इकट्ठा किया जा सकता है, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है? जो वहाँ पेड़ पौधे भी लगेंगे तो वो भी हरियाली पे आ जाएंगे, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
जी अशोक जी, जैसे इन्होंने बोला और हम भी, कोई भी आंदोलन या अभियान तभी सफल होता है जब जन भागीदारी हो और उसके लिए जरूरी है जन जागरूकता, जो राजेंद्र जी ने पूछा।
नमस्ते राजेंद्र जी, आपने अच्छा सलाह दिया। ये जैसे ललित जी बता रहे थे, जल एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है और अगर इंडिया को आगे तरक्की करना है या $5 trillion का इकोनॉमी बनाना है, उसमें सबसे लिमिटिंग फैक्टर तो पानी है। तो पानी का हम नॉर्मली हम टेकन फॉर ग्रांटेड था कि ये सब हमारे पास रहेंगे, हमको कमी नहीं होंगे।
हाँ, बहुत ज्यादा है तो महत्व
महत्व जानता नहीं, बट लेकिन आज हमको अभी मालूम पड़ा कि कई जगह पे तो पानी की समस्या बढ़ना शुरू हो गया, कई जगह पीने के लिए पानी की समस्या आता है। तो सरकार भी पिछले 10 साल से ये जल पानी को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कार्यक्रम कर रहा था। तो ये सब कार्यक्रम तभी सफल होगा, ये सभी सस्टेनेबल रहेंगे जब जन उसमें जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जल आंदोलन तो जन आंदोलन होना चाहिए, तभी
जनता की भागीदारी,
जन भागीदारी से जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है।
और हाल ही में मन की बात में भी उन्होंने जनता जनार्दन कहा था कि जुड़िए इस कार्यक्रम से, जल बचाएंगे।
कैचर इन कैंपेन के बारे में उन्होंने 30th के पिछले हफ्ते के मन की बात में बोला था। तो जैसे राजेंद्र सिंह बोला, अभी बताया, ये आम जनता इसमें बहुत योगदान कर सकते हैं क्योंकि ये हर व्यक्ति को पानी से महत्व, हर व्यक्ति उसमें महत्व रखते हैं और हर व्यक्ति हर एक बूंद पानी को बचाते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा पानी बच सकता है
दैनिक जीवन में भी। अगर बात
तो हम ये बोलते हैं कि बूंद बूंद पानी को बचाना
है, भरेगा भी अगर आप बूंद बूंद,
ये बूंद बूंद पानी को बचाना है, वो इसके लिए हर एक आदमी, बच्चे बूढ़े जवान नर नारी सबको काम करना पड़ेगा, सबका योगदान रहेंगे तभी एक आंदोलन जन आंदोलन अक्ली रूप में हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। राजेंद्र सिंह जी ने बताया वो रोड के बगल में पानी इकट्ठा कर सकता है, तो कई जगह पे पानी का संग्रह करने के लिए आई कॉल इट नेचुरल बकेट्स, नेचुरल बकेट्स हो सकता है, उसमें ताला भी हो सकते हैं, कुएं भी हो सकते हैं, टेम्पल्स का पॉन्ड्स हो सकता है, ट्यूबवेल बोर जो रिचार्ज कर सकते हैं, कई जगह पे हम नेचुरल बकेट बना के उसमें पानी स्टोर सकते हैं रेन वाटर को। तो ये रोड के साइड का एरिया में भी पानी स्टोर कर सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा खुला रहेंगे तो कभी मच्छर मच्छर गाने की संभावना हो सकता है। बट देन एरियाज विच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर आर द ह्यूज लेक, वी हैव लॉट ऑफ रिजर्वॉयर्स, स्टेप वेल्स, ऐसे बहुत सारे पानी का इकट्ठा करने के लिए स्पेसेस अवेलेबल, उसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं।
ओडिशा केंद्रपाड़ा से देश दीप दास का सवाल है। हेलो
जी, नमस्ते।
नमस्कार देशदीप जी, सवाल पूछिए।
जी मैम, मेरा सवाल है मतलब व्हाट आर द इनिशिएटिव्स फॉर रूरल एरियाज फॉर कंजर्विंग वाटर
इनिशिएटिव्स।
देखो इट्स एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क। सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एंश्योर दैट लॉट ऑफ वाटर इज कंजर्व्ड एंड दे आर गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स ऑल्सो इन दिस। नो गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड प्रोग्राम बिग कैंपेन कॉल्ड कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, वो 2019 से शुरू किया था। कैच द रेन कैंपेन 2020 से, उसके बाद 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था, प्रधानमंत्री ने खुद लॉन्च किया था। उसमें 2021 में जब जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था विद द टैगलाइन कैच द रेन वेर इट फॉल्स
व्हेन इट फॉल्स,
जहां पर से जब भी बरसे पानी को संग्रह करने का था। उसमें उसी दिन मनरेगा से जितने भी फंड्स अवेलेबल थे नेचुरल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत पैसा खर्चा करने के लिए आदेश किया गया था। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का बजट इस कार्यक्रम में लगा हुआ था। तो लोग गांव के रूरल क्षेत्र के लोगों को उस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम में भी किया था, इसका किया था कि वॉट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम जो हम मनरेगा में करते हैं दैट इज टू बी फॉर नेचुरल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो एक तो वो है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 21 से ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है जिसमें पानी को बचाने का महत्व देते हैं एंड वो उसमें से फंड्स निकाल सकते हैं।
अच्छा, दो बातें इसमें अशोक जी, अभी कैच द रेन की हम बात कर रहे थे जो पीएम ने भी शुरू की और आपके द्वारा वो शुरू किया गया था, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। अभी प्रधानमंत्री ने जब वर्ल्ड वाटर डे था तो 22 मार्च से 30 नवंबर तक उन्होंने ये अभियान चलाने की बात कही है कि खूब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, यानी मॉनसून से पहले वर्षा जल संचयन की तैयारियां पूरी हो जाए, ये मकसद है उनका। तो किस प्रकार की तैयारियां मॉनसून से पहले की जाती हैं ताकि जो बारिश आए उसको बचाया जा सके?
देखो नॉर्मली हम क्या करते थे, बारिश आएगा तभी हम बकेट लेने के लिए दौड़ते हैं
जब तो जरूरत पड़े
तो भाई। तो प्रधानमंत्री का ये पिछले 5 साल से आदेश है कि हमको तैयार रहना चाहिए, हमको नेचुरल बकेट्स तैयार करके रखना है। नेचुरल बकेट्स मतलब जहां पे पानी का
मानसून
से पहले जहां पानी को इकट्ठा कर सकते हैं उसी को तैयार करके रखना है। तो उसमें देखिए एक तो बहुत सारे तालाब पुराने हमारे हर क्षेत्र में तालाब
होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बावड़ी और तालाब होते हैं,
इसको वी कैन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डीपन इट बाय रिमूविंग द सिल्ट, वो तो उसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादातर पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे कई राज्यों में स्टेपवेल्स होते हैं उसी को वहां पे स्टोर कर सकते हैं। और रेन वाटर आवश्यक जो रूफ टॉप से जो भी पानी बारिश गिरते हैं उसको इकट्ठा करके वी कैन स्टोर इन ग्राउंड वाटर। सो कैच द रेन कैंपेन में देयर वर थ्री और फोर मेन आइडिया था उसमें. एक तो मेक अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जो केरल में जो होते हैं दैट मे नॉट बी सुटेबल इन लद्दाख, और राजस्थान में सुटेबल है तो वो तो कलकत्ता में सुटेबल
नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा.
तो इसलिए मेक अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेड टू क्लाइमेटिक एंड सॉइल सबस्ट्रेट कंडीशन, वेदर इट बी रूफ टॉप और वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, चेक डैम्स करके हमको रनिंग वाटर को वॉकिंग करना है, वॉकिंग वाटर को स्टॉप करना है. दैट इज अ सिंपल सॉल्यूशन. तो देन वाटर विल गेट स्टोर्ड देयर एंड वी आल्सो हैव टू डू टू रिमूव एनक्रोचमेंट्स एंड सिल्टिंग्स इन द टैंक्स सो दैट द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर इंक्रीजेस एंड देन चैनल्स विच ब्रिंग वाटर टू दिस वाटर टैंक्स उसको भी उसमें भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाना है. ऐसे कई काम करने से वी विल बी एबल टू स्टोर एज मच और मैक्सिमम रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर द समर, अगले समर में के लिए स्टोर कर सकते हैं.
इस्तेमाल होगा. बिहार दरभंगा से मोहन पासवान जुड़े हैं कार्यक्रम से. जी मोहन जी नमस्कार. जी सवाल पूछिए.
जल का पड़ेगी.
आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है.
कितने पेड़ लगाए
इनकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है.
आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू
लेकिन ये पेड़ और उनकी वो बात.
तो इसमें क्या है कि कैस्टर इन कैंपेन में पांच मेन फोकस थे. एक तो जैसे मैंने बताया अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है. दूसरा हमको हर जिले में या ग्राम में कितना वाटर बॉडीज है उसी का हिसाब लगाना, एन्यूमरेट करना था. तीसरा वाटर एक्शन प्लान प्रिपेयर करना था, जल शक्ति केंद्र खोलना था एंड 14 पॉइंट था एफॉरेस्टेशन. ये जो आपने बताया अभी जो एफॉरेस्टेशन वो पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है बिकॉज पेड़ के वजह से एक तो बारिश आ जाती है, दूसरा इट ऑल्सो रिड्यूसेस दी फ्लो ऑफ वाटर, उस पर ब्रेक करते हैं तो वाटर को स्टोर करने के लिए मदद करते हैं. एंड कई जगह पे पेड़ के पत्ते को नीचे गिरा के ना मल्चिंग का भी काम आ जाता है तो इट कंजर्व सॉइल. तो ये पेड़ लगाना बहुत जरूरी है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कई जगह पे उस समय आई थिंक ऑलमोस्ट 37-38 crore ट्री प्लांटेशन उस समय किया था. तो पिछले पांच साल में कई क्षेत्रों में फॉरेस्टेशन भी वन महोत्सव के रूप में कर रही है.
अब महाराष्ट्र सोलापुर से प्रकाश जी का सवाल सुनते हैं. जी प्रकाश जी नमस्कार.
मैं बोल रहा हूँ.
जी सवाल पूछिए.
हेलो.
हाँ आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए.
मैं प्रकाश राव सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ कि मैंने छत पर रेन हार्वेस्टर का काम किया है और जमीन में पानी जाता है, 50 पेड़ लगाए हैं, पेड़ अच्छे आए हैं, बांध को मैंने खेतीबाड़ी को मैंने बांध लगाया है. भारत में 80% पानी है जी. पानी तो जीवन है, पानी बचाना चाहिए.
बहुत धन्यवाद.
बहुत अच्छा ये प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं.
आप ही बताओ
सराहनीय योगदान इनका अशोक जी है.
बहुत बढ़िया क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये जन जन का आंदोलन है, हर एक आदमी उसमें जुड़ना चाहिए, हर एक को इसमें जुट के काम करना चाहिए तभी ये आंदोलन सफल
हो.
एंड आपके महाराष्ट्र में कई ऐसे ग्राम है जिसमें पहले सूखा पड़ता था और लोग माइग्रेट करके बाहर चले जाते थे. तो एक हिवारे बाजार है वहां पे गांव है जहां पे वो पानी के बजट करने से पानी का जो लेवल स्तर ऊपर होने से वहां पे हरियाली आ गई है एंड वहां पे पूरा ग्राम का गांव का एक इकोनॉमी भी चेंज कर दिया क्योंकि हरियाली आने से वहां पे दिस एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, मिल्क एनिमल्स आ गया
और चीजें भी
बहुत सारी चीज हो गया था. तो
वही जन भागीदारी पे अगर आप खुद उसमें लगेंगे, जन आंदोलन बनाएंगे तो जाहिर तौर पर जल की कमी जो है वो काफी हद तक पूरी की जा सकती है. मथुरा यूपी से, उत्तर प्रदेश से नेत्रपाल सिंह कार्यक्रम से जुड़े हैं. जी नेत्रपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए. नेत्रपाल जी आवाज आ रही है आपको?
हाँ आ रही है सर.
सवाल पूछिए.
सवाल ये ना जो तालाब होते हैं गांव में सरकारी होते हैं या वैसे होते हैं उनमें जलों कैसे रखा जाना चाहिए?
अभी आप बता ही रहे थे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि जो पहले पानी से भरे रहते थे, अब कम भी हो रहे, तो क्या किया जाना चाहिए कि वो फिर भर?
एक तो हम पहले 20-50 साल पहले हर गांव वाले मिलके हर मानसून से पहले तालाबों को रिपेयर करता था, उसका चैनल्स को रिपेयर करते थे, ये सब हुआ करते थे। बट पिछले कई 10-15 साल से वो प्रथा बंद हो गए थे। अब दोबारा हमको शुरू करना है। जैसे गांव के तालाब, गांव के जो मंदिर के पास वाला तालाब, ये सबको डीपन करने, उसकी गहरीकरण कराना है ताकि ज्यादातर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दैट, वो काम करना है। और सरकार की मदद से, सरकार के जो मनरेगा जैसे फंड से उसे भी यूज कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का फंड यूज कर सकता है। और कई जगहों पर कॉर्पोरेट लोग CSR वो भी आगे आ रहे हैं, और कई जगह पे ग्राम पंचायत का फंड्स भी लगा के करते हैं। तो जब लोगों को इसका तो महत्व समझ में आएगा, देन दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड डू इट। तो जैसे उन्होंने बताया, गांव में, हर गांव में वाटर का स्टोरेज का जो तो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके मैक्सिमम रेन को हार्वेस्ट करना
और
है।
जैसे उन्होंने बोला है कि 22 मार्च से शुरू है, तो कमर कस लेनी चाहिए, तैयारी वहां कर लेनी चाहिए। चल ही रहा है ये अभियान। दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं। जी धर्मवीर जी,
नमस्कार जी।
नमस्कार जी, सवाल पूछिए, स्वागत है।
हेलो,
हाँ आवाज आ रही है हमें, आप सवाल पूछिए।
जी मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
जी
जैसे अब सरकार की जो नई नई बिल्डिंगें बन रही है और डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है, तो उन बिल्डिंगों में अभी पहले बताया गया था कि इसमें जो बरसात का पानी संचय करने के लिए जो उनके प्लांट लगाए हैं, ये तो ठीक है। और जो आम आदमी अपने घरों का जो नया निर्माण कर रहा है, तो वो उनके निर्माण करने के लिए उनके लिए क्या जागरूकता सरकार की तरफ से बताई जा रही है? जो पहले की बावड़ियां, कुएं थे, तो उनको ये बंद कर दिया गया, उनको क्यों नहीं आप इसको द्वारा से रिपेयर करके?
अशोक जी, उसी बारे में अशोक जी आप बता ही रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हमने बात की, धर्मवीर जी जैसे शहरी क्षेत्र का जिक्र किया, यहाँ क्या प्रयास किए जाने चाहिए, RWA सोसाइटीज का क्या योगदान होना चाहिए?
बहुत बढ़िया योगदान है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का योगदान इसमें रहेंगे, क्योंकि शहर में सबसे ज्यादा दिक्कत होते हैं जब समर शुरू होते हैं, टैंकर की नो रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, पानी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में ग्राम रूरल एरिया से ज्यादा प्रॉब्लम शहर में, शहर के लोगों में आते हैं। तो जैसे आपने बताया, ऑल रेन वाटर न्यू बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जगह के प्रावधान है, उसके बाद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। बट प्रॉब्लम है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक ही बार मिलता है, तो अगले साल से वो उसका मेंटेनेंस ठीक से करते नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट इस कार्यक्रम कैश रेन के इस कार्यक्रम में उसमें से लोगों को बताते हैं कि आप अप्रैल में जून जब तक बारिश मानसून ठीक से ज्यादा स्टार्ट नहीं होता है, अप्रैल में जून में एक्सिस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, जिसका चैनल से उसी को साफ करके नहीं, कई जगह पत्ता वत्ता गिर के वो ब्लॉक हो जाता है। हमारे छत में भी बहुत सारे पत्ते गिर के वो जो पानी जो बहने के लिए चैनल होता है वो बंद हो जाता है, उसको साफ करना है। और कई जगह पे जो रेन वाटर इकट्ठा करने के लिए जो पॉइंट्स हम नीचे जमीन में बनाते हैं, वो एकदम सॉलिड हो जाता है, वो पानी अंदर नहीं जाता है, उसको खुले हिला हिला के उसमें छोटे छोटे पत्थर लगा के, ग्रेवल लगा के उसको हिला के पानी को नीचे जाने का रास्ता देना है। ये कार्यक्रम हमको मार्च अप्रैल मई में करना है। और ये जो पर्टिकुलरली दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे पार्क होते हैं, तो वहां पे एक्टिव रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, तो इन एरिया में इस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये कार्यक्रम करना है पहले, कि उनके एरिया में जितने भी बिल्डिंग्स है उसके छत का पानी को इकट्ठा करके आइदर एक वहां पे पार्क में या कहीं पे उसमें जमा करना है। दूसरा, ऐसे करने से हमारे बहुत सारे फायदा भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग अभी एक बड़ा नया समस्या बनकर उभर के आया है। अर्बन फ्लडिंग इसलिए होता है क्योंकि बारिश का पानी, एक तो बारिश अभी ज्यादा भी हो रहा है, बारिश के पानी को जाने का जगह नहीं है,
प्रॉपर रास्ता नहीं है,
और कई जगह पे कॉन्क्रीट और टाइलिंग करके अपना आंगन भी पूरा
वाटर टाइट कर पक्का कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, मिट्टी हाँ, वाली जगह कच्ची छोड़ते हाँ, नहीं है,
वो पानी नीचे जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ऐसे जगह पे आपको छोटा एक छोटा सा एरिया ओपन करके पानी को नीचे जाने का जो रास्ता देना चाहिए, एंड ये सब कार्यक्रम RW वाले कर सकते हैं
जी। यानी जैसे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का या बाकी महंगे सामान का एनुअल मेंटेनेंस AMC कराते हैं, इसी तरीके से मार्च अप्रैल में हमें वाटर हार्वेस्टिंग की हाँ। उसका भी मेंटेनेंस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, यह भी उतना ही जरूरी है। महाराष्ट्र नाशिक से बारकू शचे वाले शायद इनका नाम है, ये जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो
हेलो
जी, नमस्कार, आवाज आ रही है आपको?
हाँ, आ रही आ रही।
सवाल
मैं ये पूछना चाहता है, पानी कैसे बचाए? धूप बहुत तकलीफ होती है हमको, क्या है बरसात में वो कैसा गांव में इकट्ठा होके ऐसा कुछ कर सकते हैं
जी? जो ये पूछ रहे हैं
वही तो, एक्चुअली नासिक के एरिया में वो मराठवाड़ा एरिया है, सब जगह में पानी की दिक्कत होते है, ज्यादा लोग परेशान होते रहते हैं। तो दो तीन चीज हमको याद रखना है, एक तो रेन वाटर जो भी बारिश होती है उसके ज्यादातर ज्यादातर पानी को हमको अपने जगह पे इकट्ठा करने का संचय करने का कार्यक्रम कराना है। दूसरा हमने देखा, आपने महाराष्ट्र नासिक एरिया में मैंने देखा कई जगह पे वाटर शुगर क्रेन क्रॉप का बहुत सारा है वहां पे, तो अप्रोप्रिएट क्रॉप्स भी हमको करना चाहिए, क्योंकि देश में ज्यादातर पानी हम एग्रीकल्चर इरिगेशन में यूज करते हैं और कई जगह में ओवर इरिगेशन करते हैं, वाटर इसका यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बहुत कम है। मतलब जहां पे बाहर के किसान भाइयों 700 लीटर से एक यूनिट वीट या गेहूं या अन्न पैदा करते हैं, हमारे यहाँ पे 3000 से 4000 लीटर यूज करते हैं, मतलब ज्यादा ओवर इरिगेशन करते हैं और वाटर गजलिंग क्रॉप यूज करते हैं, शुगर केन से वाटर गजलिंग क्रॉप। तो इसमें यह सलाह है कि अप्रोप्रिएट क्रॉप, सही फसल आपको लगाना है, आपके एरिया में अगर पानी का जो कमी है
उसी हिसाब से
अप्रोप्रिएट वाटर ग्रेसिंग क्रॉप नहीं लगाना। जैसे इन्होंने नासिक में बताया, नासिक में शुगर केन है, शुगर केन इज नॉट अप्रोप्रिएट क्रॉप देयर, तो सही फसल भी लगाना चाहिए,
उसकी सलाह ताकि वाटर
यूसेज कम हो।
उत्तर प्रदेश रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी का सवाल है जी। नमस्कार रमाशंकर जी, सवाल पूछिए।
हेलो
जी, हमें आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए।
आवाज आ रही
जी? आ रही है, आप सवाल पूछिए।
हाँ, रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली। मैडम ये मैं पूछना चाहता था कि जो बरसात पहले तालाब वगैरह होते थे तो उनमें पानी प्राकृतिक तौर से स्टोरेज होता था, मगर जब से मनरेगा द्वारा उनकी सफाई और ये हुई तो उसमें वो पानी रुकता ही नहीं।
मनरेगा और बेसिकली जो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि जो बावड़ियां या तालाब हैं उनका पुनरुद्धार या उनके मरम्मत की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी।
नहीं, मनरेगा कार्यक्रम से तालाब और बावियों का गहरीकरण कर सकते हैं। कई जगह पे जैसे मैंने बताया अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे अगर वो सॉइल बहुत पोरस है, पानी नीचे चला जाता है, तो नीचे चला जाए तो आप हमारे एक्वीफर में जाते हैं और वो हम बोरवेल से उठा सकते हैं। अगर आपको तालाब के तरफ यूज करना है तो नीचे एक ब्लैक कॉटन सॉइल के लाइनिंग कराएंगे तो भी पानी रहता है, तो पानी तालाब में रह सकते हैं या अंडरग्राउंड वाटर में भी स्टोर कर सकते हैं, हम बोरवेल से यूज लिफ्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, दुनिया में सबसे ज्यादा रेन वाटर ग्राउंड वाटर यूज करने वाला देश हमारा है।
लेकिन बहुत जरूरी है कि उस ग्राउंड वाटर को कम से कम हम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नीचे लेवल जाता रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। और इसी को जब से कैच द रेन शुरू हुआ है कैंपेन, अशोक जी कितना सफल ये अभियान रहा है और कितना हमने जल संचयन और जल संरक्षण में सफलता पाई है?
देखो कैच द रेन कैंपेन जैसे मैंने बताया ऐसे डिसेंट्रलाइज कैंपेन, मतलब पहले हम क्या करते थे, पानी को इकट्ठा करके एक डैम बनाते थे, डैम एक जगह पे कहीं भी एक स्टेट के कोने में या डिस्ट्रिक्ट के कोने में डैम बनाते थे, वहां से कैनाल्स में पानी सिंचाई के लिए देते थे। ये कैच द रेन कैंपेन का मतलब था कि जहां बरसे जब भी बरसे पानी को वहीं के वहीं
दबाना है,
तो इसका दिस इज अ डेमोक्रेटाइज वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। तो एक तो पानी आपके 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 एरिया में रहेंगे और वो उससे सॉइल की नमी रहती है, सॉइल विल नॉट बी डेड, सॉइल विल बी एक्टिव एंड ऑर्गेनिकली। सब पानी रहते तो उसके जीव जंतु भी रहते हैं, अर्थवर्म्स रहते हैं, वो पाए देखिए फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है। तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स एडवांटेजेस ऑफ कैचिंग द रेन। दूसरा ये पानी का लेवल इम्प्रूव हो जाता है, तभी आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। आपने पूछा क्या फायदा हुआ, पिछले 5 साल में जब से कैच द रेन कैंपेन शुरू हुआ, आंकड़े बताते हैं कि देश के सब जगह में वाटर टेबल का वाटर का स्तर ऊपर आ गया है, उठ गया है, जबकि ज्यादातर एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है। पहले से भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के बावजूद अब तो वाटर का स्तर ऊपर हो गया। आंकड़े बताएंगे तो 11 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी का संचय हुआ है इस कैच द रेन कैंपेन की वजह से।
संतोषजनक वो है आंकड़े, और आगे भी हमें इसको बहुत अच्छे से निभाना है कैच द रेन कैंपेन को। दिल्ली से अंसार अली कार्यक्रम से जुड़े जी। अंसार अली जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
आदाब जी सभी को।
जी आदाब, सवाल।
हाँ, मेरा ये सवाल है कि शहरीकरण हो रहा है और इसकी वजह से भू क्षेत्र घटता जा रहा है, ऐसे में सरकार क्या प्रयास कर रही है पानी के संरक्षण के लिए?
देखो मैं ये बताता हूँ सरकार क्या कर रहे हैं, वजह से वी शुड टेक हम जनता
हम क्या कर रहे हैं,
तो ये सब मिलके आपको काम करना है, सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना है। बट सरकार अपने तरह से ऐसे कैंपेन जन अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, मनरेगा जैसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं, अमृत में फंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे तालाब रिपेयर करने के लिए, तालाब बनाने के लिए, इसका गहरीकरण करने के लिए सब पैसे देते हैं, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में भी मतलब कई जगह पे कई म्यूनिसपैलिटीज कॉरपोरेशन वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें टैक्स में भी छूट देते हैं, ये ऐसे इंसेंटिवाइज करते हैं। तो हम सब मिलकर इसको काम करना है, हम सबको एक आंदोलन बनाए सरकार के ऊपर।
जल है सबके लिए उपयोगी है, और जन आंदोलन की ही हम बात कर रहे हैं कि सबको मिलकर करना पड़ेगा। अभी आप सरकारी सहायता और मदद छूट की बात भी कर रहे थे अशोक जी, उपयुक्त स्थान कैसे हो जल संचयन के लिए, जो रेन वाटर पिट होता है उसे कैसे तैयार करें, और अगर हमारे घर में लगभग कितनी जगह चाहिए होगी अगर हम अपने घर या उसमें।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमको टेक्निकली हमको पता होना चाहिए कैसे काम करना, कैसे कितना खर्चा होना चाहिए। देखो इसके लिए भी गवर्नमेंट एक प्रावधान बनाए कि हर जिले में, अभी पहले हमने रेन सेंटर खुलता था उसके बाद उसको शिफ्ट करके जल शक्ति केंद्र हर जिले में खुल गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में कि म्यूनिसपैलिटी में, तकरीबन हर जिले में अभी जल शक्ति केंद्र खुल गया है, जहां से लोगों को ये पता चल सकता है कि आपके एरिया में किस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र एरिया में जहां पे सॉलिड रॉक का सब्सट्रेट है, तो उनमें उस जगह पे अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है, राजस्थान में अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके एरिया में उपयुक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में जल शक्ति केंद्र में पता चल सकते हैं, आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट के ऑफिस में पूछेंगे तो बताएंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका कौन सा कितना कॉस्ट रहेंगे, ये सब के बारे में वो टेक्निकली सलाह देंगे।
रिचार्ज पिट भी कोई होता है
उसको कैसे रिचार्ज पिट भी कर सकते हैं। देखो उसमें हमारे पुराने बावियां होते हैं, जो बावरिया होते हैं वो सूखा पड़ा होगा, उसको भी रेन वाटर के हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पुराना बोरवेल्स जो सूखा पड़ा है उससे भी, उसके द्वारा भी हम पानी नीचे पहुंचा सकते हैं। तो ऑल अवेलेबल वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को हम वाटर संचय करने के लिए यूज करना है।
और कुल मिला के यही बात आ रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये है कि एक तो पानी बहकर बर्बाद नहीं होता, आगे इस्तेमाल भी होता है और इसके बहुत से फायदे होते हैं। भूजल पर हमारी निर्भरता कम होती है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है अशोक जी कि हमारी अपनी जन भागीदारी रहे, उसे जन आंदोलन बनाए, जनता जनार्दन का काम, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। उम्मीद करते हैं कि जल का संचयन और संरक्षण इस कार्यक्रम के बाद अगर थोड़ा बढ़ेगा तो एक अच्छी बात है। और घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब लवली निगम को इजाजत दीजिए, नमस्कार।